ये एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने पश्चिमी सोच पर सदियों तक अपनी छाप छोड़ी है। ये है सेंट ऑगस्टीन की महान रचना द सिटी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का नगर।
नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई बहुत खास है। सोचिए, 1600 साल पहले लिखी गई।
1600 साल
जी, जब ताकतवर रोमन साम्राज्य मुश्किलों से घिर रहा था और लोग जवाब ढूंढ रहे थे, ऑगस्टीन ने उस उथल पुछल के बीच इसे लिखा।
बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक लगती है।
सही बात है।
दुनिया में ताकत और सत्ता की खींचतान, निजी विश्वास और बाहरी दबावों के बीच का वो संतुलन, इतिहास को देखने का नजरिया, ये सब मुद्दे आज भी हमारे सामने हैं। तो ये किताब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
तो चलिए फिर इसी सोच को जगाने वाली किताब और इसके लेखक को थोड़ा और करीब से जानते हैं।
हाँ, शुरुआत करते हैं लेखक से। सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, ये चौथी पांचवीं सदी में, मतलब 354 से 430 ईस्वी के बीच जिए।
जी।
और इन्हें पश्चिमी दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिना जाता है। वो रोमन उत्तरी अफ्रीका यानी आज के अल्जीरिया में पैदा हुए थे।
और उनकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्हें उस जमाने की बेहतरीन शिक्षा मिली थी, खासकर बोलने की कला, मतलब रेटोरिक और दर्शन शास्त्र में।
अच्छा।
लेकिन शुरुआत में वो काफी भटके हुए भी थे। कई अलग अलग विचारों और क्या कहते हैं, फिलॉसफीज से गुजरी, जैसे मैनिकेइज्म, नियोप्लेटोनिज्म।
हाँ, और फिर उनका ईसाई धर्म की तरफ झुकाव हुआ, जिसकी कहानी उन्होंने अपनी मशहूर किताब कन्फेशंस में लिखी है।
जी हाँ,
ये जानना जरूरी है क्योंकि यही अनुभव उन्हें द सिटी ऑफ गॉड लिखने के लिए एक अनोखी समझ देता है। मतलब वो रोमन संस्कृति को अंदर बाहर दोनों से जानती थी, उसकी शिक्षा भी पाई थी और बाद में उसकी कमियों को भी पहचाना।
बिल्कुल सही कहा। वो सिर्फ एक बाहरी आलोचक नहीं थी, उन्हें रोमन इतिहास, साहित्य, दर्शन का गहरा ज्ञान था। वो प्लेटो को जानती थीं, वर्जिल को पढ़ चुकी थीं, इसलिए जब वो उस समय के रोमन तर्कों का जवाब देती हैं तो वो हवा में बातें नहीं कर रही होती।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि उन्हीं की जमीन पे खड़े होकर बात करती हैं। और साथ ही हिप्पो शहर के बिशप होने के नाते उनके पास एक आध्यात्मिक गहराई और लोगों की चिंताओं की सीधी समझ भी थी।
यानी ज्ञान, अनुभव और जिम्मेदारी का एक दुर्लभ मेल।
हाँ,
शायद इसीलिए वो एक टूटती हुई दुनिया के बीच उम्मीद और समझ का इतना गहरा नजरिया पेश कर पाए।
बिल्कुल। अब आते हैं किताब पर। द सिटी ऑफ गॉड, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये धर्म, दर्शन और इतिहास का एक विशाल संगम है। ऑगस्टीन ने इसे लिखने में करीब 13 साल लगाए।
13 साल, वो भी उस माहौल में जब रोमन साम्राज्य लड़खड़ा रहा था।
जी हाँ।
तो इसका मकसद क्या था? क्या सिर्फ ईसाई धर्म का बचाव करना था, क्योंकि रोम की मुसीबतों के लिए कई लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे ना?
हाँ, वो एक जरूरी हिस्सा था, जिसे हम रक्षात्मक पहलू कह सकते हैं। ऑगस्टीन ये दिखा रही थी कि ईसाई धर्म रोम के पतन का कारण नहीं है।
अच्छा।
लेकिन इससे भी बढ़कर उनका एक रचनात्मक मकसद था। वो मानव इतिहास और समाज को समझने का एक बिल्कुल नया ईसाई नजरिया पेश कर रही थी।
एक नया फ्रेमवर्क कह सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल, एक नया फ्रेमवर्क। तो ये किताब हमें किस तरह की यात्रा पर ले जाती है?
हाँ, बताइए।
ये शुरू होती है रोम पर हुए हमले के सदमे से। ऑगस्टीन पहले उन आरोपों का जवाब देती हैं जो ईसाई धर्म पर लग रहे थे। वो दिखाती हैं कि पुराने रोमन देवी देवता रोम को बचा नहीं पाए, बल्कि ईसाई चर्चों ने तो हमलावरों के बीच शरण दी।
अच्छा,
ये बात भी थी।
हाँ।
फिर वो रोमन इतिहास और दर्शन की पड़ताल करती हैं, ये तर्क देती हुए कि उनकी महानता में भी कहीं ना कहीं घमंड और ताकत की भूख, वो लिबिडो डोमिनेंडी जिसे वो कहती हैं, वो छिपी थी।
और इसके बाद फिर वो कहाँ ले जाते हैं?
इसके बाद ऑगस्टीन अपना मुख्य विचार पेश करती हैं, दो शहरों का सिद्धांत।
दो शहर?
हाँ, ये दो शहर कोई भौगोलिक जगह नहीं है।
अच्छा।
बल्कि दो तरह के इंसानी समाज है जो दो अलग अलग तरह के प्रेम पर आधारित है। एक है मनुष्य का नगर, द अर्थली सिटी, जो खुद से प्यार और दुनिया पर कब्जा करने की चाहत पर टिका है।
और दूसरा?
दूसरा है ईश्वर का नगर, द सिटी ऑफ गॉड, जो ईश्वर के प्रेम और विनम्रता पर आधारित है।
अच्छा, तो ये दो शहर बने कैसे? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई?
ऑगस्टीन इनकी जड़ें इंसानियत की शुरुआत से भी पहले ले जाती हैं, स्वर्गदूतों के विद्रोह तक।
अरे?
हाँ, एक तरफ वो फरिश्ते जिन्होंने घमंड में ईश्वर से मुंह मोड़ा, दूसरी तरफ वो जो वफादार रहे। यही पैटर्न फिर इंसानों में दिखता है, आदम और हव्वा का पतन।
अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक विभाजन है।
बिल्कुल, और इस तरह इतिहास इन दो शहरों के बीच एक लगातार चलने वाला संघर्ष बन जाता है।
और इतिहास को वो कैसे देखते हैं? क्या ये बस घटनाओं का एक अंतहीन चक्कर है, गोल गोल घूमता हुआ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑगस्टीन इतिहास को एक सीधी रेखा की तरह देखती हैं, जिसका एक मकसद है।
लीनियर व्यू ऑफ हिस्ट्री।
हाँ बिल्कुल, ये ईश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। इसकी एक शुरुआत है सृष्टि, एक केंद्रीय बिंदु है ईसा मसीह का जीवन, और एक अंत है अंतिम न्याय। रोम का पतन भी इसी बड़ी कहानी का एक हिस्सा है, कोई बेमतलब हादसा नहीं।
दिलचस्प। तो पहले हिस्से में जहाँ वो बचाव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि रोम का पतन ईसाई धर्म की वजह से नहीं हुआ।
हाँ,
बल्कि रोम की अपनी कमजोरियां थी।
हाँ, वो पहले हिस्से में किताब 1 से 10 में यही करती हैं। वो पूछती हैं कि जब रोम अपने शिखर पर था, तब भी क्या वहाँ सब ठीक था? क्या देवताओं की पूजा ने रोम को नैतिक पतन, गृह युद्धों और आपदाओं से बचाया था?
सही सवाल है।
और वो रोमन इतिहासकारों और कवियों का ही हवाला देकर बताती हैं कि रोमन समाज में क्रूरता, अन्याय और अनैतिकता भरी पड़ी थी। देवता खुद भी तो अच्छे आदर्श नहीं थे।
हाँ, उनकी कहानियाँ तो काफी अजीब हैं।
बिल्कुल, और सिर्फ देवी देवताओं की नहीं, वो दार्शनिकों की भी आलोचना करती हैं।
हाँ, किताब 6 से 10 में वो प्लेटो और उनके अनुयायियों की बुद्धिमता का सम्मान जरूर करती हैं, मानती हैं कि वो सच्चाई के काफी करीब पहुँचे थे।
अच्छा,
लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ इंसानी तर्क, मतलब रीजन, हमें पूरी सच्चाई या मुक्ति नहीं दिला सकता।
क्यों, उनमें क्या कमी थी?
ऑगस्टीन कहते हैं कि दार्शनिकों में भी एक तरह का बौद्धिक अभिमान था। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि परम सत्य यानी ईश्वर इंसान के रूप में धरती पर आ सकता है, मतलब ईसा मसीह का अवतार।
अच्छा, इनकार्नेशन का विचार।
हाँ, ऑगस्टीन के लिए असली रास्ता विनम्रता और ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है, सिर्फ बुद्धि से नहीं।
तो फिर आते हैं उनके मुख्य विचार पर। किताब 11 से 22 में वो दो शहर, ये असल में है क्या, थोड़ा और बताइए।
हाँ, ये दो तरह के समाज हैं, जैसा आपने कहा, और ये दो तरह के प्रेम से चलते हैं।
दो प्रेम?
हाँ, मनुष्य का नगर या सांसारिक नगर, ये चलता है एमोर सुई यानी स्वयं के प्रेम से, खुद से इतना प्यार कि ईश्वर की भी परवाह नहीं।
अच्छा।
इसमें ताकत, शोहरत, दुनियावी चीजों की चाहत हावी होती है। बाइबल के किरदारों में देखें तो केन, जिसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया, इस शहर का प्रतीक है।
और बड़े साम्राज्य?
हाँ, बड़े बड़े साम्राज्य जैसे बेबीलोन, रोम, ऑगस्टीन के अनुसार ये सब इसी शहर के उदाहरण हैं।
और दूसरा शहर ईश्वर का नगर, वो कैसे चलता है?
वो चलता है एमोर देई यानी ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर से इतना प्रेम कि इंसान खुद को भी भूल जाए।
वाह।
इसके सदस्य विनम्रता, सेवा और ईश्वर पर निर्भरता को महत्व देते हैं। हाबील जो मारा गया, वो इस शहर का पहला शहीद प्रतीक है। फिर इब्राहिम और उनके वंशज और बाद में ईसाई समुदाय इस शहर के नागरिक माने जाते हैं।
लेकिन ये दोनों शहर तो दुनिया में मिले जुले रहते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक देश ईश्वर का नगर है और दूसरा मनुष्य का नगर?
बिल्कुल सही। ऑगस्टीन यही कहते हैं कि धरती पर ये दोनों शहर गेहूं और जंगली दानों की तरह मिले हुए हैं।
अच्छा, साथ साथ?
हाँ, एक ही परिवार, एक ही शहर, एक ही देश में दोनों तरह के लोग होते हैं। इनका असली अलगाव तो इतिहास के अंत में अंतिम न्याय के समय होगा।
तो तब तक?
तब तक ईश्वर के नगर के नागरिक इस दुनिया में तीर्थयात्री या पेरिग्रिनी की तरह रहते हैं।
तीर्थयात्री? इसका क्या मतलब है, मतलब यात्री?
हाँ, एक तरह से यात्री ही, मतलब ये कि उनका असली घर, उनकी असली नागरिकता स्वर्ग में है। वो इस दुनिया के नियमों का पालन करते हैं, समाज में योगदान देते हैं, शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन उनका दिल इस दुनिया में नहीं रमता।
अच्छा।
वो जानते हैं कि यहाँ सब कुछ अस्थाई है, उनकी अंतिम उम्मीद और मंजिल कहीं और है।
ये तो बहुत गहरा विचार है। और अंत में इन दोनों शहरों का भविष्य क्या है? आखिरी किताबों 19 से 22 में वो क्या बताती हैं?
हाँ, किताब के आखिरी हिस्से में वो इसी पर बात करते हैं, अंतिम न्याय, मृतकों का जी उठना और दोनों शहरों का स्थायी अलगाव।
अलगाव मतलब?
मनुष्य के नगर के लिए अनंत दंड और ईश्वर के नगर के लिए ईश्वर के साथ अनंत शांति और आनंद, जिसे वो बियाटिफिक विजन कहते हैं, ईश्वर का साक्षात दर्शन।
अच्छा।
ये इतिहास का अंतिम लक्ष्य है, जहां ईश्वर का न्याय और प्रेम पूरी तरह जाहिर होगा।
तो इस विशाल और गहरी किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं, मतलब की टेक अवेज?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही है दो नगरों का सिद्धांत। ये दुनिया को समझने का एक चश्मा है। ये राजनीति या भूगोल का बंटवारा नहीं बल्कि दिलों का बंटवारा है। हमारा असली झुकाव किस तरफ है, खुद की तरफ या ईश्वर और दूसरों की तरफ, यही तय करता है कि हम किस शहर के नागरिक हैं।
सही है। और दूसरा?
दूसरा, इतिहास का एक रैखिक और उद्देश्यपूर्ण नजरिया। ऑगस्टिन कहते हैं कि इतिहास यूं ही नहीं चल रहा, ये कहीं जा रहा है।
हाँ, ये आपने पहले बताया था।
इसमें उतार चढ़ाव है, मुश्किलें हैं, लेकिन ये सब एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। ये नजरिया बड़ी से बड़ी त्रासदियों को भी एक मायने देता है। जैसे आज भी जब दुनिया में बड़ी उथल पुथल होती है तो ये सोचना कि शायद ये किसी बड़े बदलाव का हिस्सा है थोड़ी हिम्मत देता है।
बिल्कुल। तीसरा, न्याय और राज्य की भूमिका पर उनका विचार बहुत दमदार है। वो पूछती हैं, अगर न्याय न हो तो राज्य लुटेरों के गिरोह से ज्यादा क्या है?
ये तो बहुत तीखी बात है।
हाँ, मतलब किसी भी सरकार या व्यवस्था की असली बुनियाद ताकत नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि कोई भी दुनियावी राज्य पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता।
अच्छा।
हाँ, लेकिन फिर भी उनका काम समाज में व्यवस्था और एक हद तक शांति बनाए रखना है, जो जरूरी है।
और चौथा संदेश?
चौथा है अभिमान और विनम्रता का संघर्ष। ऑगस्टीन के लिए सारी बुराई की जड़ अभिमान है, सुपर्बिया, खुद को खुदा समझ लेना।
और अच्छाई की जड़?
विनम्रता, ये मानना कि हम ईश्वर पर निर्भर हैं। ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखता है। क्या हम अपनी कामयाबियों का सारा श्रेय खुद को देते हैं या दूसरों के योगदान और किस्मत को भी मानते हैं?
बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है पांचवां संदेश, ईसाई या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का दुनिया में एक तीर्थयात्री होना।
हाँ, वो पेलग्रिनी वाली बात।
हाँ,
हम इस दुनिया में रहते हैं, इसकी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ इसी से नहीं बनती। हमारी अंतिम वफादारी किसी ऊंचे आदर्श या सच्चाई के प्रति होती है। ये हमें दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा उलझने या निराश होने से बचा सकता है।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं। कुछ यादगार विचारों या कोट्स को देखते हैं?
हाँ जरूर। पहला तो वही है, दो तरह के प्रेम ने दो शहर बनाए हैं। दुनियावी शहर बना है खुद के प्रेम से, जो ईश्वर की भी परवाह नहीं करता। स्वर्गीय शहर बना है ईश्वर के प्रेम से, जो खुद की भी परवाह नहीं करता।
ये तो जैसा आपने कहा पूरी किताब का निचोड़ है। ये बताता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम किसे ज्यादा अहमियत देते हैं, अपनी मर्जी को या किसी ऊंची सच्चाई को? बिल्कुल। दूसरा, जो आपने पहले भी कहा, न्याय हटा दो तो सरकारें बड़े डाकू दलों के सिवा क्या हैं?
हाँ, ये आज भी कितना प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी सत्ता का मूल्यांकन सिर्फ उसकी ताकत या अमीरी से नहीं होना चाहिए,
बल्कि न्याय से।
हाँ, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि वो कितनी न्यायप्रिय है, चाहे वो देश हो, कोई कंपनी हो या कोई भी संगठन।
सही। तीसरा, अभिमान ही सारे पापों की शुरुआत है।
ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत गहरा है। जब हम खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं, दूसरों से या किसी बड़ी शक्ति से कट जाते हैं, तभी मुश्किलें शुरू होती हैं। ये हमें अपनी सीमाओं को पहचानने की याद दिलाता है।
और चौथा, शांति पर एक विचार। स्वर्गीय नगर की शांति ईश्वर में और एक दूसरे के साथ ईश्वर में पूरी तरह व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण आनंद है।
ये दुनियावी शांति से बहुत अलग है। दुनिया में शांति अक्सर बस लड़ाई का ना होना होती है या ताकतों का एक अस्थायी संतुलन। ऑगस्टीन सच्ची शांति को एक गहरी आंतरिक और बाहरी समरसता के रूप में देखती हैं,
जो शायद पूरी तरह से इस जीवन में ना मिले।
हाँ, शायद नहीं, पर जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं।
तो अब असली सवाल यह है कि 1600 साल पुरानी इस किताब की बातें आज हमारे किस काम आ सकती हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये दोहरी निष्ठाओं को संभालने में मदद करती है। हम सब कई भूमिकाएं निभाते हैं, नागरिक, कर्मचारी, परिवार के सदस्य।
हाँ बिल्कुल।
ये तीर्थयात्री वाली सोच हमें याद दिलाती है कि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाएं, पर अपनी अंतिम पहचान या मूल्य किसी एक देश, पार्टी या कंपनी तक सीमित न रखें। इससे एक तरह की आज़ादी मिलती है,
एक पर्सपेक्टिव मिलता है। दूसरा,
ये इतिहास और वर्तमान घटनाओं को समझने का एक अलग चश्मा देती है। जब दुनिया में कुछ बुरा होता है या चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो ऑगस्टीन का नजरिया हमें बहुत ज्यादा निराश या बहुत ज्यादा उत्साहित होने से बचाता है।
मतलब एक बैलेंस्ड व्यू।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और चीजों के पीछे गहरे कारण हो सकते हैं।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा, ये खुद को समझने का एक जरिया बन सकती है। वो दो प्रेम वाली बात,
हाँ,
हम अपने कामों के पीछे की असली वजह क्या है? क्या हम शोहरत, पैसे या ताकत के लिए जी रहे हैं? आत्मप्रेम या किसी बड़े मकसद, सेवा या दूसरों की भलाई के लिए, ईश्वर पड़ोसी का प्रेम? ये सवाल हमें ज्यादा ईमानदारी से जीने में मदद कर सकता है।
आत्मविश्लेषण के लिए अच्छा टूल है। और चौथा?
और चौथा, ये मुश्किलों और नाकामियों का सामना करने की हिम्मत देती है। ये किताब खुद एक बड़े संकट के समय लिखी गई थी।
हाँ, रोम के पतन के समय।
बिल्कुल, इसका संदेश है कि दुनिया की चीजें आती जाती रहती हैं। असली सुरक्षा और खुशी बाहरी सफलता या चीजों में नहीं है। अगर हमारी नींव किसी गहरी स्थायी चीज पर टिकी है तो हम बाहरी झटकों को बेहतर झेल सकते हैं, रेजिलियंस मिलती है।
तो कुल मिलाकर द सिटी ऑफ गॉड हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाइयां शायद तोपों और तलवारों से ज्यादा हमारे अपने दिलों में लड़ी जाती हैं।
बिल्कुल,
हम अपने प्रेम को किस दिशा में मोड़ते हैं, अंदर अपनी तरफ या बाहर ईश्वर और दूसरों की तरफ, यही हमारी और हमारे समाज की कहानी तय करता है।
हाँ, ये हमें एक दोहरा नजरिया देती है। हमारा ये जीवन, ये समाज, ये संघर्ष, ये सब असली हैं और महत्वपूर्ण हैं। हमें यहीं पर शांति और न्याय के लिए काम करना है।
लेकिन
साथ ही ये याद रखना है कि ये पूरी कहानी नहीं है। हम एक बड़ी यात्रा का हिस्सा हैं, एक ऐसे शहर के नागरिक जिसकी नींव इस दुनिया से परे है।
मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ऑगस्टीन ने उस जमाने के बेहतरीन ज्ञान, मतलब रोमन और यूनानी दर्शन को लिया और उसे अपनी आस्था के साथ जोड़कर एक नया और शक्तिशाली नजरिया पेश किया। वो दिखाता है कि विश्वास और तर्क दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और मेरे लिए वो न्याय के बिना राज्य डाकुओं के गिरोह हैं वाली बात, ये आज भी उतनी ही तीखी और जरूरी लगती है।
सही कहा।
ये हमें हमेशा सत्ता पर सवाल उठाने और न्याय की मांग करने की याद दिलाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।